ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के सातवां स्कंद दूसरा अध्याय 14 नंबर श्लोक पाठ करके श्रवण करेंगे। बहुत मार्मिक श्लोक है। पुरा ग्राम ब्रज उद्यान क्षेत्र आराम आश्रम आकरान पुर ग्राम ब्रजोद्यान क्षेत्र रामाश्रमाकरान खेट खरवट घोषांस ददहु पत्तनानि च खेट खरवट घोषांस ददहु पत्तनानि च पुर ग्राम ब्रजोद्यान क्षेत्र रामाश्रमाकरान। श्रील प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। पूरा नगर तथा कस्बे या कम्बे कस्बे ग्राम गांव ब्रज चार ग्रह है। उद्यान बगीचे क्षेत्र छेद आराम प्राकृतिक जंगल आश्रम संतजनों की कुटिया आकरान खाने जिनसे ब्राह्मण संस्कृति को बनाए रखने के लिए मूल्यवान धातुएं निकलती है। खेट गांव खरवट पहाड़ी गांव घोषान ग्वालों के छोटे छोटे गांव च तथा ददहु जला दिया पत्तनानी राजधानियों को च भी। श्रील प्रभुपाद अनुवाद में लिखते हैं असुर ने नगरों गांवों चार ग्राहों उद्यानों खेतों तथा जंगलों में आग लगा दी। उन्होंने साधु पुरुषों के घरों मूल्यवान धातु उत्पन्न करने वाली महत्वपूर्ण खानों कृषकों के आवासों पर्वतीय ग्रामों ग्वालों की बस्तियों को जला दिया। उन्होंने सरकारी राजधानी को भी जला दी। तात्पर्य में लिखते बड़ा सुंदर भाव देते हैं। उद्यान उन स्थानों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जहां फल तथा फूल उत्पन्न करने के लिए वृक्ष उगाए जाते हैं, जो मानव सभ्यता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। भागवत गीता में कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्ता प्रजच्छति तदहम भक्तुम उपहृतम अस्नामे प्रजतात्मनः। यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति पूर्वक एक पत्ती फूल फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। फल तथा फूल भगवान को अत्यंत प्रिय है। यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करना चाहता है तो वो केवल फल तथा फूल अर्पित कर सकता है और भगवान उन्हें ग्रहण करके प्रसन्न हो जाते हैं। हमारा एकमात्र कर्तव्य है परम भगवान को प्रसन्न करना। संसिद्धि हरितोषणम। हम जो कुछ भी करें, हमारा व्यवसाय चाहे कुछ भी हो, हमारा मुख्य लक्ष्य परमेश्वर को प्रसन्न करना या तुष्ट करना होना चाहिए। इस श्लोक में वर्णित सारी सामग्री विशेष रूप से भगवान की तुष्टि के निमित्त है, अन्य किसी की इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। सरकार का ही नहीं अपितु सारे समाज का गठन ऐसा होना चाहिए कि हर एक को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को संतुष्ट करने की शिक्षा दी जा सके। किंतु दुर्भाग्यवश इस युग में नते विदुषार्थ गतिम ही विष्णु, लोग यह नहीं जानते कि मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान विष्णु को तुष्ट करना है। इसके विपरीत ये असुरों की तरह विष्णु को मारकर इंद्र तृप्ति द्वारा सुखी बनना चाहते हैं। यही श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरयेत्। आज श्रीमद्भागवतम के असुरराज हिरण्यकश्यपु इस अध्याय का नाम है। तो इस अध्याय का जो 10 लक्षण है, 10 लक्षणों में एक लक्षण है उति वासना। वासना दो ही प्रकार के हैं, एक शुभ वासना और एक अशुभ वासना। शुभ वासना जीव में आती है कैसे? महत की कृपा से। महत्पुरुषों को जब कृपा होती है तब उसमें शुभ वासना आती है। और अशुभ वासना जब किसी महत्पुरुष का कोप होता है, क्रोध होता है, तो उसमें अशुभ वासना आ जाती है। तो हिरण्यकशिपु में जो अशुभ वासना, जो आसुरिक भावना, इसका कारण क्या है? सनकादिक का कोप, सनकादिक ऋषियों का क्रोध, उनका अभिशाप के कारण उनमें इस प्रकार की अशुभ वासना। और उनका ही पुत्र प्रहलाद महाराज, उनका शुभ वासना क्या कारण है? कि नारद जी का कृपा। इसलिए महत्पुरुष से कृपा की बहुत जरूरी है। और जैसे भक्तापराध, कोई महत्पुरुष का अपराध हो जाए तो शुभ वासना समाप्त हो जाती है। तो शुभ वासना को जैसे शुद्ध भक्ति, इसका संरक्षित करने का उपाय क्या है? दैनता और मान दान, सम्मान प्रदान, शील स्वभाव, इसी के माध्यम से इसका संरक्षण करना है। सद्गुण, जो शुभ वासना है, इसका संरक्षण के लिए ये आपको गुण अपनाना पड़ेगा, न तो भाई टिकेगा नहीं। तो सप्तम स्कंद में टोटल 15 अध्याय है। कितने अध्याय है? 15 अध्याय। पहले 10 अध्यायों में केवला भक्ति का वर्णन हुआ है। केवल भक्ति मतलब जहां ज्ञान और कर्म का मिश्रण नहीं है। और आखिरी जो 5 अध्याय है, ये 5 अध्यायों में गुणीभूत भक्ति, गुणीभूत भक्ति मतलब गुणी मतलब छोटा, गुण मतलब ह्रास, इसमें ज्ञान और कर्म का मिश्रण है। तो इसीलिए ये जो दस अध्याय है, ये 10 अध्याय शुद्ध भक्ति का वर्णन हुआ है। प्रहलाद महाराज सिखाएंगे किस प्रकार से शुद्ध भक्ति करना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये जो नवविदा जो भक्ति है वहां वर्णन आएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ये जो पहले जो श्लोक दिया, पहले श्लोक, ये दोनों श्लोक एक साथ है। इति ते भर्ति निर्देशम आदाय शिरसाद्रिता। जब हिरण्यकशिपु भर्ति, जो हिरण्यकशिपु के जो अनुचर रहे, जो उनके जो सेवक वृंद, जब इस प्रकार से अपने स्वामी की आज्ञा प्राप्त करके, स्वामी की आज्ञा को प्राप्त करके प्रजानम कदनम विदधु, कदन प्रिय, कारण कदन प्रिय मतलब हिंसा प्रिय, जिनका मन में हिंसा भावना है वो है कदन प्रिय। कदन मतलब कष्टम, विदधु मतलब जला दिया, मतलब विदधु मतलब दिया, विदधु मतलब दिया, इसका अर्थ मतलब इसका इस श्लोक अर्थ ये है, कदन प्रिय कदनम विदधु, जो सेवक जो हिरण्यकश्यप के जो सेवक रहे, जो अनुचर रहे, वो कदन प्रिय है, हिंसा प्रिय है। हिंसा प्रिय का क्या, उनका क्या काम है? सबको जलाना है, सबको नष्ट करना है, ये उनका लक्ष्य है। जब इस प्रकार का जो उन्होंने आज्ञा मिली अपने प्रभु से, अपने प्रभु कौन है, हिरण्यकश्यप से जब इस प्रकार की आज्ञा प्राप्त हुए, तो उन्होंने एक काम करना शुरू किया। एक पूरा ग्राम खेत है ना, ब्रज उद्यान क्षेत्र राम श्रमा करान खेत खरवट घोषांग से ददहु पत्तनानिच, इस सबको जला दिया। पहले स्वामी के आदेश प्राप्त किए, आदेश प्राप्त करके एक काम किया, कदनम कष्टम। हाँ, पहले टीका में, इसका टीका में देखिए कितना सुंदर भाव दे, श्रील प्रभुपाद उसी के अनुवाद किया, विश्वचक्र पूर्वम हाट बाजार सहित नगर, जहां हाट बाजार है उसी को पूर कहते हैं। ग्राम किसको कहते हैं? तद रहितम, जहां हाट बाजार नहीं है उसको क्या कहेंगे? ग्राम। ब्रज किसको कहेंगे? जहां गौ का वास स्थान, गौ माता जहां वास करती है, गौ का वास स्थान। उद्यान किसको कहते हैं? पुष्प प्रधान वन, जहां पुष्प का प्रधानता है उसको उद्यान कहेंगे। क्षेत्र किसको कहेंगे? धान, जहां धान खेत उसको क्षेत्र कहेंगे। ब्रीही मतलब जहां गम, गम का खेती होती है, खेत खेती करते उसको ब्रीही कहते। आराम फल प्रधान वन, जहां आराम किसको कहेंगे? जहां फल, जिस वन में फल फल ही फल है उसको आराम कहेंगे। आश्रम किसको कहेंगे? ऋषियों का स्थान। आश्रम जैसे गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम और संन्यास आश्रम, चार आश्रम है। तो आश्रम शब्द का अर्थ है जहां सम्यक प्रकार से श्रम किया जाता है विष्णु प्रीति के लिए। गृहस्थ आश्रम ये आश्रम है, यह इंद्र तृप्ति का स्थान नहीं है। यह क्या है कि विष्णु प्रीति के लिए सारा दिन भर श्रम करे, उनकी प्रसन्नता के लिए और किसी की प्रसन्नता के नहीं। अत पुंभी द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग सह सनुष्ठित से धर्म से संसिद्धि हरितोषणम। ये जो आश्रम और वर्ण प्रभु ने सृष्टि किया, इसका लक्ष्य क्या है? स अनुष्ठित से धर्म से संसिद्धि हरितोषणम। आश्रम जिस जो आश्रम में है, जो जिस वर्ण में है, वो अपना अपना कर्तव्य को निभाए और साथ साथ प्रभु की प्रसन्नता करे। यही जीवन का हर क्रिया में आराधना की भावना होनी चाहिए। हर क्रिया में खा रहे, पी रहे, सो रहे, जा रहे, जो भी कुछ कर रहे क्रिया, सब का लक्ष्य क्या है? हरि प्रसन्न। इसी से कि हरि प्रसन्न होंगे। मैं जो बातें कर रहे हैं, ये वार्ता भी बड़े सावधानी से करनी चाहिए, किसी के दिल में चोट ना पहुंचे, किसी को हृदय में आघात ना पहुंचे। वाणी बहुत मिठास होनी चाहिए, किसी प्रकार से वाणी में मतलब कड़वापन, जलने वाला ने तीखी वान, ऐसे वाणी कभी नाश ग्रहण करे। तो आश्रम का यही अर्थ है। आश्रम मतलब सम्यक रूप से श्रम, जहां आश्रम किसके लिए? प्रभु प्रीति विधान के लिए, दूसरे किसी के लिए नहीं। आज जहां इंद्र की सुख भावना है वहां आश्रम नहीं है, वो आश्रम नहीं है। इंद्र विषय की ओर जा रहे हैं, हमारे इंद्रिय हर इंद्रिया क्या कर रहे हैं? विषय की ओर जा रहे हैं, विषय की तरफ जा रहे, ठीक है, जाना स्वाभाविक है, किंतु जाने का लक्ष्य क्या है? मैं रूप का दर्शन करे, प्रभु का रूप हर वस्तु में, किसी भी वस्तु दर्शन करे, प्रभु ही दर्शन हो, हमारे प्रिय इष्ट जो है इष्ट का ही दर्शन हो। जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे। हाँ, हमारा नेत्र जहां जहां जाए वही वही कृष्ण का स्फुरन हो, यही है आश्रम का लक्ष्य। इसलिए प्रभु चार वर्ण और वर्णाश्रम गठन करने का यही उद्देश्य था प्रभु जी का, प्रभु श्री कृष्ण का, कि समाज सुगठित हो, सभी जीव हमारी आराधना करे। हम जितना मतलब प्रयास नहीं करते, प्रभु ज्यादा अधिक प्रयास करते, जीव कष्ट पा रहे संसार में जल्दी जल्दी लौट कर आ जाए, इसलिए इतने विधान, इतने शास्त्र का निर्माण, इतने संतों का भेजना, लक्ष्य क्या है? सभी जीव मेरे पास आ जाए, और कोई उद्देश्य नहीं। वेद पुराण, एक श्लोक है चैतन्य चरितामृत में, जीवेर कृपाई कैले कृष्ण वेद पुराण। भगवान कृष्ण ने वेद पुराण को भेजा किस लिए? जीव के कल्याण के लिए। तो यहां पुरो ग्राम ब्रजोद्यान क्षेत्र राम श्रमाकरण, आकरण मतलब जहां रत्नों का खनि हो। आकरण का अर्थ लिख रहे जीव चक्रवर्ती पर रत्न, रत्नादि खनि, रत्नों का खनि। खेत मतलब जहां कृषक लोग वास करते हैं उसको खेत कहते हैं, खेत कृषकों का स्थान। और खरबट गिरी, जो गिरी पर्वत के सामने जो गांव है उसको खरबट कहेंगे, पहाड़िया गांव, यहाँ प्रभुपाद जी लिखे। और घोष किसको कहते हैं? जो गोपों का पल्ली, गोपों का, जहां गोप लोग निवास करते, जहां गौ माता की जो सेवा करते, वो जो गोपों का जो घर है उसको पल्ली कहेंगे, घोष कहेंगे। पत्तन मतलब राजधानी, पत्तन शब्द का अर्थ क्या है? राजधानी। इसको क्या किया? पूरा जला दिया, ददहु पत्तनानिच। असुर का यही काम है कि प्रभु का सृष्टि को नष्ट करना है। प्रभु इस संसार को सृष्टि किया किस लिए? अपने प्रीति विधान के लिए। असुर का क्या काम है? प्रभु के विरोध में कुछ करना है, जो कुछ करना है प्रभु के विरुद्ध में करना है, ये असुर का काम है। तो हिरण्यकशिपु अपने अनुजाइयों को यही शिक्षा दे, सब कुछ जला दो। हाँ, जलाने से ही, किंतु प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, नते विदु सार्थगतिम हि विष्णुम, जे इनका कोई ज्ञान नहीं है। एक बार प्रहलाद महाराज के पिता क्या क्या नाम था? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र से पूछने लगे कि बेटा, जो गुरुकुल में जो शिक्षा प्राप्त की है उत्तम शिक्षा क्या है? प्रहलाद अनुच्युतम तात सधितिम सधितम किंचित उत्तमम, उत्तमम अधितम किंचित बद, कुछ बोलो। काले न एतावत, इतना दिन से जो सीखा है, इतना समय से जो पाठ पढ़े हैं, काले न एतावत आयुष्मान, हे आयुष्मान, इतने दिन तक जो पढ़ाई किए हैं, हाँ, जद अशिक्षत गुरुर भवान, गुरु कुल में गुरु के सान्निध्य में जो पाठ पढ़ाई किए हैं उसको मेरे सामने कहो। उच्चताम, उच्चता मतलब कथ्यताम, कहिए। प्रहलाद कहने लगे, श्रवणम कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दश्यं सुखम आत्मनिवेदनं इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा क्रियते भगवत्तद्ध्या तन्मन्य अधितम उत्तम, उत्तमम अधितम विद्या, माने विद्या को मैं सुनाता हूं। क्या विद्या है? श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम अर्चन वंदन दास्य सख और आत्मनिवेदन, ये नवविदा जो भक्ति है ये है उत्तम अधितम उत्तमम। इति पुंसार पिता, जब पुरुष, यहाँ पुंसा लिखा, पुंसा मतलब स्त्री का नाम नहीं लिया, स्त्री का नाम लिया यहाँ, जो पुरुष इस प्रकार नवविदा भक्ति करेंगे पुंसा, तले स्त्री छूट गया, स्त्री तो इसमें नहीं है, स्त्री की अभक्ति नहीं करेंगे। टीका में लिखते हैं पुंसा जाति, मतलब जाति वाचक शब्द है, इसमें स्त्री का भी लेना पड़ेगा। पुंसा मतलब यहाँ स्त्री भी आता है, स्त्री भी भक्ति करेंगे। इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चित नवलक्षणा, यहाँ पुरुष स्त्री दोनों परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे। अक्रियते भगवती अद्धा, अद्धा मतलब शुद्धा भक्ति, शुद्धा भक्ति मतलब जहां ज्ञान और कर्म का मिश्रण नहीं है उसको कहते अद्धा। क्रियते भगवती अद्धा तन्मन्य अधितम उत्तमम। अर्पितम का शब्द का अर्थ लिया अर्पित, श्रीधर साईपाद लिखते हैं सबसे पहले अपने को समर्पण करें, पहले सबसे पहले अपने को अर्पित कर दे भगवान के चरणों में, बाद में अर्पण करना नहीं, हम लोग क्या करते पहले कर्म करते उसके बाद अर्पण करते। जीव चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि प्रीति विष्णु और प्रीति के लिए सेवा करे, कर्म करे, उनकी प्रीति विधान के लिए जो कुछ भी करे, उनकी प्रीति विधान के लिए यही समर्पण का भाव दिया। चले श्रीधर स्वामी पाद का क्या भाव है, पहले अपने को पहले चढ़ा दो कि प्रभु मैं आपका हो, मैं किसी का नहीं हो, उसके बाद और अर्पण करने की, क्योंकि सबसे पहले आपने को अर्पित कर दिया और अर्पण करने की जरूरत नहीं है। किंतु चक्रवर्ती पाद लिखते विष्णु प्रीति विधान के लिए जो कुछ भी कर्म किया जाए, जो सारा सुबह से शाम तक खा रहे, पी रहे, सो रहे, सांस ले रहे, जो कुछ कर रहे, उनकी उद्देश्य से, उनकी प्रीति विधान के लिए। इति पुंसार पिता विष्णु, जो इस प्रकार से नवविधा भक्ति का अनुष्ठान करेंगे तो क्या होगा, प्रहलाद महाराज लिखते हैं यही नवविधा जो भक्ति के जो शिक्षा है यही उत्तम विद्या है, और मैंने ये असुर जो गुरुकुल में शिक्षा नहीं प्राप्त किया, ये कहाँ पढ़ाया गया, ये हमारे गुरु नारद मुनि के मुख से मैंने सुना था। ये जो पाठ जो पढ़ाई जा रहे इस पाठ से नहीं पढ़ा, ये पाठ यहाँ नहीं पढ़ा मैंने। जब इस प्रकार से वाणी को सुने प्रहलाद के मुख से, वो हिरण्यकशिपु पूरा तिलमिल आ गया, अरे एक हमारे गुरुपुत्र से खूब क्रोधित हुए, जो जो गुरुपुत्र कौन, गुरु संडामर का, उससे बहुत क्रोधित हो गया। हे दुर्मते, हिरण्यकशिपु अपने संतान को, पुत्र को दुर्मते कह रहे, दुर्मते हे वाल बुद्धि, माम अनादृत असारम ग्राहित, असार विद्या को ग्रहण किया, सार विद्या को सीखा नहीं, विष्णु के जो मेरा शत्रु है उसी का ही शिक्षा ग्रहण किए, तुम दुर्मते दुर्मते, तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है। जब इस प्रकार से डांटने लगे तो हिरण्यकशिपु के संड अमर का कहने लगे, संड अमर का हिरण्यकशिपु कहने लगे कि प्रभु जी ये जो संति हसा धवो लोके दुर्मित्र छंद वेशिन, इनका ही वचन है हिरण्यकशिपु का, कि हमारी खा रहे हमको ही हमारे बिगाड़ रहे हैं, ये जो संड अमर का ये हमारे पुत्र का नाश कर रहे हैं, इनका कोई दोष नहीं। तो गुरुपुत्र कहने लगे, गुरुपुत्र मतलब संड अमर का, नामत प्रणीतम, नामत प्रणीतम मतलब नामत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदन्ते स तवेन्द्र शत्रु, हे इंद्र शत्रु, हे इंद्र शत्रु मतलब हे हिरण्यकशिपु, हाँ नामत प्रणीतम नामत पठितम एसव एस तब एस सुतो न वदते, मत प्रणीतम मैंने जो पढ़ाया इस प्रकार का पाठ नहीं पढ़ाया मैंने, नामत प्रणीतम, प्रणीतम मना पठितम, इस प्रकार से पाठ मैंने नहीं पढ़ाया, न पर प्रणीतम अन्य के बहकाने से इस पाठ को ये नहीं पढ़े, हाँ किसी ने कुछ ज्ञान दे दिया इसी प्रकार से बोल रहे ऐसे नहीं। नैसर्गिकीयम मतिरश्च राजन अश्य, हे राजन अश्य मति नैसर्गिकीयम, इस स्वाभाविक इनका स्वभाव से ही ये ज्ञान आ गया। नैसर्गिकीयम मतिरश्च राजन निरच्छ, निरच्छ मतलब परित्यक्त, आप इस प्रकार क्रोध का परित्याग करें, ये हम ये इनको हम लोग ने इसने ही सिखाया, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, मैंने ना तो पढ़ाया ना किसी ने बहकाया, इसको किसी ने न पढ़ाया, हाँ ऐसो नैसर्गिक मति मतलब स्वाभाविक प्रवृत्ति इनमें है। तो नारद मुनि कहने लगे जब इस प्रकार से गुरु मुख से सुने, गुरु पुत्र के मुख से सुने, संडवर के मुख से हिरण को सुने, तो हिरण को पूछने लगे रे हाँ, अरे यदि अगर गुरु मुख से नहीं सुना है तो कहाँ से असत ज्ञान कुतः प्राप्त है, ये ज्ञान असत ज्ञान कहाँ से प्राप्त किए हाँ। तो प्रहलाद महाराज लिखते बड़ा सुंदर मार्मिक श्लोक, मोतीर न कृष्ण परतो सतो वा मिथो विपद्येत गृह व्रतानम अदांत गोभीर विशताम तमेश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वनानम। कृष्ण मति न, कृष्ण मति नहीं लगते, परतः सतोवा, आपने चेष्टा तो चेष्टा से भी नहीं लगेगा, दूसरे के चेष्टा से भी नहीं लगेगा। कृष्ण मति न, मतिर न कृष्ण, कृष्ण मति न, कृष्ण में बुद्धि नहीं लगती है, ना तो आपने चेष्टा से लगेगा ना दूसरे की चेष्टा से लगेगा। गृह व्रतानम मिथो अभिपद्यत, मिथो अभिपद्य मतलब दूने के चेष्टा से भी नहीं लगेगा, मैं भी प्रयास करें और दूसरे के प्रयास में भी नहीं लगेगा। किसको नहीं लगेगा? गृह व्रतानम, जो घर गृहस्थी में आसक्त है, जो घर गृहस्थी में आसक्त है उनका ना तो आपने अपने उपदेश से लगेगा ना दूसरे के उपदेश से लगेगा, ना दोनों उभय का उपदेश में लगेगा। कृष्ण मति न, किसको नहीं लगेगा? गृह व्रतानम, जो गृह घर गृहस्थी में आसक्त है। अदांत गोभीर विषतम तमिश्रम, जो असंगजमी है, जो संगजमी नहीं है, अदांत है, गोभी विषतम मतलब प्रवेश, प्रवेशम प्रवेश करते हैं, तमिश्रम मतलब नरक, नरक नरक में जाते हैं। पुनः पुनश्चर्वित चर्वनानम, चबाहे को बार बार चबाते, ये सांसारिक जो भोग है ये चबा हुआ वस्तु को बार बार एक ही चीज को बार बार पीसते रहते हैं, हाँ, तो इनका मन भगवान में कभी नहीं लगेगा, ना अपने प्रयास में लगेगा ना किसी के बोलने पर लगेगा। मतिर न कृष्ण, तो लक्ष्य उद्देश्य क्या है? नते विदु सार्थगतिम हि विष्णुम दुराशया ए बहिरर्थ मानिन, जे दुराशया, जिसका हृदय दुराशय है, आशय मतलब हृदय, जिसका हृदय अंतकरण निर्मल नहीं है, बहुत मतलब ये है कुछ अंतकरण मन मलिन है, दुराशया मतलब मलिन मन, मलिन चित्त, बहिरर्थ मानेना, क्योंकि बहिरर्थ मानेना बहिर सांसारिक वस्तु का ही जीवन का लक्ष्य उद्देश्य माना, इनका मन सार्थ गतिम हे विष्णु ते न विदु, जिस जीवन का लक्ष्य विष्णु है ये इसको स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं जान पाएंगे। जिसका चित्त वृत्ति बहिरर्थ मानेना दुराशया ते न विदु सार्थ गतिम, सार्थ गतिम न विदु, सार्थ विष्णु सार्थक जीवन का लक्ष्य है ये कभी नहीं स्वीकार करेंगे। जिस प्रकार से अंधा दूसरे अंधा को गड्ढा में ले जाकर छेपन करते गिराते, अंधा और एक अंधा क्या करेंगे? वही गिराएंगे जहां वो गिरेगा। तो इसीलिए कैसे लगेगा? बहुत सुंदर श्लोक, नई श्याम मतिस्तावदरु क्रमांग्रीम स्पृशत तनर्थापगमो जदर्थ मही असम पाद रजोभिषेकम निष्किंचनानम न वृणीत जावत जावत, जब तक निष्किंचनानम मही असम पाद रजोभिषेकम न वृणीत, जब तक भगवान के भक्तों का चरण रज से अभिषिक्त नहीं होंगे, भगवान के चरण रज का स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक तावत ऐसा मति इनकी मति उरु क्रमांग्रिम न स्पृशति, भगवान के चरण कमल में स्पर्श कभी नहीं करेगा। किसका नहीं करेगा? जिसका मति माने जो भगवान के भक्तों के चरण रज से जो अभिषिक्त नहीं होंगे उसका मति कभी भगवान में लगेगा नहीं। इसीलिए शरणागति की शिक्षा दी जाती है पहले, गुरु श्रय गुरु आश्रय, हाँ, इसलिए निष्ठा की बात कही जाती है। एक बार परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज से मतलब पूछने लगे, रोज रोज सुबह सुबह जाते रोज दर्शन के लिए, भिन्न भिन्न जगह दर्शन के लिए जाते रोज, तो रोज एक जगह में जाना बा रोज जाना कोई एक आध दिन जा सकते, जाने से ही भाव बढ़ता है, कृष्ण चेतना की वृद्धि होती है, ये निष्ठा की बात है सुना रहे हैं। जब तक निष्ठा नहीं बन पाएगा तब तक शुद्ध केवल हवा मतलब समय एव ही केवलम, समय ही व्यर्थ जाएगा। तो कहने का उद्देश्य ये है कि निष्ठा गुरुजन के आचरण से सीखना चाहिए, किस प्रकार से मौन भगवान में लाग जाए। रोज मंगला में आना एक निष्ठा है, रोज दर्शन करना, सुंदर झांकी का दर्शन करना एक लक्ष्य। भले 104 डिग्री बुखार है, ना आने के कारण बेड पर ही सोए से रोएंगे कि मैं आज जा नहीं पाया। इतना तड़पन आएगा, इतना बेकुलता आने आ जाएगा कि वो रहने में मुश्किल हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार की भावना को तैयारी करना, और कभी बहुत काल तक जब अभ्यास करेंगे, बहुत दीर्घ काल और बहुत दिन तक और निरंतर जब तक अभ्यास इस प्रकार से नहीं हो पाएगा, तब तक ये जो रोना धना ये नहीं आ पाएगा, नहीं आएगा। तो इसलिए प्रभु के लिए रोना यही सबसे बड़ा भजन है। तो यहाँ लिखते ऐसा मति तावत उरु क्रमांग्रिम न स्पृशति, चरण कमल नहीं लगता है जब तक भगवान के चरणों के भक्तों के चरणों में अभिषिक्त नहीं करेंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रभुपाद जी का तात्पर्य में उद्देश्य एक ही है कि इसे भगवान में मन लागे, मन किसी प्रकार से मन भगवान में लगाना है। जीवन का लक्ष्य है विष्णु की प्रसन्नता। तो चैतन्य महाप्रभु अद्वैत प्रभु जो है ये चैतन्य महाप्रभु से 52 साल की उम्र में बड़ा है। कितना साल? 52 इयर्स। माने चैतन्य महाप्रभु जन्म से 52 साल उम्र में बड़े हैं। कौन? अद्वैत आचार्य प्रभु। तो अद्वैत आचार्य प्रभु महाप्रभु गुरु ज्ञान करते हैं, गुरु मानते कि प्रभु है। और चैतन्य महाप्रभु अद्वैत प्रभु गुरु मानते हैं क्योंकि माधवेंद्रपुरी के शिष्य है, माधवेंद्रपुरी पाद के शिष्य है। कौन? अद्वैत प्रभु। और चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी पाद के शिष्य, ईश्वरपुरी पाद किसके शिष्य है? माधवेंद्रपुरी पाद जी के। इसलिए गुरु ज्ञान होना स्वाभाविक। माधवेंद्रपुरी रिहो शिष्य ये ज्ञाने आचार्य गोसाई रे प्रभु गुरु करी माने, आचार्य गोसाई को प्रभु गुरु करके मानते हैं। यहाँ बड़ा सुंदर भाव है। चैतन्य आद्य आचार्य प्रभु सबको उपदेश करते, चैतन्य के दास बनो, चैतन्य के दास बनो। कृष्णदास से अभिमान सुखे आपना पसरे, कृष्णदास हौ जीवे उपदेश करे। कृष्णदास हो जीव, सभी जीव को उपदेश करते। कृष्णदास अभिमाने जे आनंद सिंधु, कोटि ब्रह्म सुख नए तार एक बिंदु। कृष्णदास होने से ही जीव का परम शांति है। ब्रह्म सुख में वो आनंद नहीं है, कृष्णदास में जो आनंद है। इसी प्रयार में, इसी प्रकरण में श्री कृष्णदास कुबेरी गोस्वामी ये दिखाना चाहते सबको दास बनना है। कैसे दास बने? नित्यानंद प्रभु और वयस उम्र में बड़े हैं, चैतन्य महाप्रभु से अवस्था में बड़े हैं। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु दोनों ही गुरु माने गुरु तुल्य है, किंतु दोनों ही महाप्रभु को गुरु करके मानते। इसी से लिखते हैं यहाँ लोके उपदेशे हौ चैतन्य दास, चैतन्य गोसाई मोरे, चैतन्य गोसाई मोरे करे गुरु ज्ञान, तथा प्रिय मोर है दास जो अभिमान। कि दास अभिमान से सुख है। फिर यहाँ जो खुद दास अभिमान करे, नंद बाबा भी दास मानते, अपने को दास मानते, जितने भी गुरु गुरु पिता माता है फिर भी अपने को दास अभिमान करते। दशम स्कंद 47 अध्याय में लिखते हैं, मनसो वृत्तयो नसु कृष्ण पादंबुजाश्रया वाचो अभिधायिनी नामनाम कायस्तत्प्रहनादिषु कर्मभिर्भ्रममानानं यत्र कापि सरिच्छया मंगलाचरिते दाने रतिर्न कृष्ण ईश्वरे। इसका अर्थ ये है, मनसो वृत्तयो नसु, मेरे मन की जो वृत्तिया है कृष्ण पादंबुजाश्रय नसु, हमारे मन की जो वृत्ति है कृष्ण चरण कमल लगे। उसके बाद बाचो अभिधायिनी नामना, वाणी कहाँ लगे? भगवान के गुणानुवाद करने में। और कायस्तत प्रहनादिशु, हमारे जो शरीर जो है अभिवादन करने में, प्रणाम करने में, प्रभु के प्रणाम करने में हमारा शरीर लगे। कर्मभिर ब्रह्म माननम, हमें कर्म के फल के अनुसार जहां जहां घूमते रहे इसमें कोई ये नहीं। कर्मभिर ब्रह्म माननम, हमें हमारे कर्म के अनुसार हम किस कोई किसी भी जन्म में जाए तो प्रार्थना क्या है, मंगला चरित्र दाने रतिर न कृष्ण ईश्वरे, प्रभु श्री कृष्ण ईश्वर में मेरा मन रति आसक्ति बना रहे है। ये नंद बाबा बोल रहे है, किसको बोल रहे है, उद्धव को। देखिए अपना पुत्र है किंतु क्या मांग रहे है कि कृष्ण की दासता मांग रहे है, कृष्ण की दासता बनी रहे। फिर श्रीदाम आदि सखा जो है ये भी अपना दासता मान कर रहे है क्योंकि प्रभु की प्रसन्नता करने, जो सबका लक्ष्य है देखिए प्रभु की प्रसन्नता है। श्रीदाम आदि ब्रज जत सखर निचय ऐश्वर्य ज्ञानहीन केवल सखमय, कृष्ण संगे युद्ध करे स्कंधे आरोहन तारा दास भावे करे चरे न सेवन। सब दास के मेरा कहने का उद्देश्य सबको दास, सब सभी दास की भावना कर रहे, क्यों कर रहे, प्रभु की प्रसन्नता। जीवन में लक्ष्य क्या है, प्रभु की प्रसन्नता। पाद श्लोक में सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, पाद संवाहनम चक्रो केचित महात्मन अपरे हतपप मानो व्यजने सम बीजयन। कोई पैर दबा रहे, कोई व्यजन से हवा कर रहे, ये दासता की भावना है कि दास भावना से सेवा कर रहे। फिर गोपीजन दास भावना से सेवा कर रहे, कृष्ण प्रेयसी ब्रजे जत गोपीगण जार पद धूलि करे उद्धव प्रार्थन। उद्धव जिसकी चंद्र रज की प्रार्थना करते मुझे गोपीजन की रज प्राप्त हो जाए। जा सवार ऊपरे कृष्ण प्रिय नहीं आन तहारा अपना के करे दासी अभिमान। ब्रज की गोपिया अपने को दासी अभिमान करते कि मैं प्रभु की दासी हूँ। ब्रज जनार्तिहन बीरजो सीताम निज जन स्मय ध्वंस न स्मित भज सखे भव किंकरी स्मनो जल रुहाननम चारु दर्शय। कहने का उद्देश्य गोपी गीत में क्या भाव है, किंकरी, किंकरी मतलब मैं आपकी दासी हूं, आप मुझे दासी रूप से स्वीकार करें। हम सब तुम्हारी किंकरी है, आप अपना मुख कमल मुझे दर्शन कराए, ये है भावना। फिर एक श्लोक में लिखते हैं, मैंने कहने का उद्देश्य गोपीजन अपने को दासी भावना कर रहे हैं, ये दास भावना का श्लोक है। सब जगह दासी, दासी भावना करने का उद्देश्य क्या है कि हमारे परम प्रियतम श्याम सुंदर को खुशी करना है। जीवन का लक्ष्य प्रभुपाद जी लिखे कि सभी जीवन हम जो कुछ भी करें, हमारा व्यवसाय चाहे कुछ भी हो, हमारा मुख्य लक्ष्य परमेश्वर को प्रसन्न करना या तुष्ट करना होना चाहिए। यही ये मेन पॉइंट है, तुष्ट करना है, कैसे तुष्ट करें। फिर लिखते हैं, अपिवत मधुपुरजम आर्जा मधुपुरजम आर्य पुत्र अधुनास्ते। गोपीजन कहती है मथुरा के कृष्ण, मथुरा में कृष्ण रह रहे हैं, कहाँ रह रहे, मथुरा में। गोपीजन कहती ब्रज से, कहती है उद्धव से, उद्धव से बोलते हैं, आर्य पुत्र मथुरा मधुपुरजम आर्य पुत्र अधुना आस्ते, अधुना इस समय मधुपुरी मथुरा में श्याम सुंदर रह रहे हैं। स्मरति स पितृगृहं, कभी पिता माता का स्मरण करते हैं कि नहीं, सम्मम बंधुमस्य गोपान, बंधुओं का गोपों का कभी स्मरण करते हैं। क्वचिदपि स कथा न किंकरी नाम गृणीते, हम जैसे किंकरी दासियों की कभी कथा सुना बोलते हैं, हमारा स्मरण करते हैं कभी। कब ऐसा दिन आएगा, भुजम अगर सुगंधम मूर्धनि अध्यसत कदानु, कब उस दिन आएगा जो अपना अगर युक्त सुगंध युक्त हाथ हमारे सिर पर रखेंगे। ये प्रार्थना कर रहे किससे, उद्धव से बोल रहे, कभी स्मरण करते, कहने का उद्देश्य अपने खुद को किंकरी मानते हैं, हम मैं उनकी किंकरी हो, कब उस दिन आएगा जो प्रभु मेरे सिर पर हाथ रखेंगे। फिर राधारानी कहती है, आपने को दासी मानती है, তাসবার কথা রহু শ্রীমতী রাধিকা সবা হইতে সকলাংশে পরময় অধিকা দেহ তার দাসী হইয়া সেবে ন চরণ যার প্রেম গুণে কৃষ্ণ বদ্ধয় নুকসন। কৃষ্ণ জিসকে প্রেমে বাঁধে হুয়ে, কৃষ্ণ রাধারণী কে প্রেমে বাঁধে হুয়ে, কৃষ্ণ মে কই বল নেই হ্যাঁ ইহা লিখতে হ্যাঁ, হা নাথ রমন পৃষ্ঠ কাশী কাশী মহাভুজ, হে নাথ হে রমন হে মহাবাহু হে মহাভুজ, কৃপনায়াম দাস্যাস্তে কৃপনায়ামে সখে দর্শয় সন্নিধিম, মে আপকি দাসী হো মুঝে কব দর্শন দোগে, দাস্যাস্তে কৃপনায়ামে সখে দর্শয় সন্নিধিম, মে অতি দীনা হো মুঝে কব দর্শন দোগে। এই বহুত বিরহ কি শ্লোক হ্যাঁ, মানে ফির দ্বারকা কি মহিষী ভি আপনি দাসী মানতি হ্যাঁ, তপস চানন্তি মাগ্গা দ্বারকাতে রুক্মিণাদি যতে ক মহিষী তাহারাও আপনাকে মানে কৃষ্ণ দাসী, তপস চরন্তি মাগ্গায় সপাদ স্পর্শনাশয়া সুখ উপেতা গ্রহিত পানিম সাহম তদ গৃহ মার্জনী। जब कालिंदी तपस्या कर रहे थे तो उस समय भगवान कृष्ण सखा को भेजे, अर्जुन को भेजे, अर्जुन के साथ आए और अपना पानी कालिंदी की पानी ग्रहण किए और कालिंदी कह रही कि उस समय मैं प्रभु के घर की मार्जनी गृह मार्जनी बन गई हैं, क्योंकि मैं तपस्या कर रही थी उस समय प्रभु और कौन आए, अर्जुन आए आकर मेरे पानी ग्रहण करे और मैं उस समय उनकी गृह मार्जनी घर की मार्जनी बन गई। तो अपने को दासी भावना, जब तक दास भावना जब तक नहीं आएगा तब तक बात बनेगा नहीं। तो इसलिए महाप्रभु जब पूछा गया सनातन गोस्वामी पूछे हे प्रभु जीवेर स्वरूप क्या, महाप्रभु क्या कहे, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हमेशा दास भावना करें। तो एक बार एक छोटा सा मतलब निष्ठा की बात सुनाते, एक व्यक्ति उनके एक कन्या एक की कन्या है और विवाह यज्ञ है, विवाह का समय उपस्थित हुआ तो ये जो व्यक्ति ये जो भक्त ये भक्त बिहारी जी के भक्त ये 100-150 साल की पुरानी बात है, 100 साल से ऊपर, तो रोज बिहारी जी में भंडारी सेवा करते, भंडारी मतलब ठाकुर जी कुछ भोग राग बनाना कुछ उसी जगह में सेवा करते थे। तो सेवा के पश्चात उनका रोज का नियम, रोज बिहारी जी में जाना है भंडारे में सेवा करना है, और इस साइड में बेटी के विवाह का दिन उपस्थित हो गया, सब रेडी सब उस दिन आएंगे, किंतु क्या करें जाए बिना रह नहीं पाएंगे और जाने से सब लोग गाली देंगे, होता है ना, रोज जो नियम है नियम भी छोड़ नहीं सकते और जाने से सब लोग डांटेंगे, अरे बेटी की शादी एक ही बेटी है कम से कम एक दिन तो रहो कुछ तो कुछ भी हो ना हो कम से कम घर पर रहने से कुछ तो मदद मिलेगा, किंतु वो क्या कि आखिरी सब बहुत प्रयास किया रहने का रह नहीं पाया, वो चले ही गया, चल जाकर सेवा किया, पूरी सेवा कर गया, फिर शाम को आया, सुबह गया शाम को आया, अरे देखिए बेटी की शादी हो गई विदा हो गई सब समाप्त, फिर जब घर में आएगा उस जानते हैं कि सब लोग डांटेंगे गाली गलौज करेंगे कहाँ इतना समय कहाँ गायब हो गए थे। जब आए आने के पश्चात देवी स्त्री बहुत आदर कर रहे हैं, बहुत मारे आ जाओ खा प्रसाद पालो बहुत बहुत मतलब वो ऐसे सोचा भी नहीं कि इस तरह मुझे इस प्रकार के आपायन करेंगे हैं, वो सोचा पूरा सीधा सीधा गाली खाना पड़ेगी गाली खाना पड़ेगा। तो आए और सुंदर देखे सब लोग आदर कर रहे, कोई किसी के मुख में कोई कुछ शब्द नहीं, वो तो माने शांति से खा पी के सो गया, उन्हें क्या घटना उसको कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। 2-4 दिन के बाद वो एल्बम खोल के देख रहे हैं बेटी की शादी के एल्बम हाँ फोटो के एल्बम, देखे सब जगह में फोटो है उनका हाँ सभी जगह में उनका फोटो है, तो वो तो बहुत आश्चर्य हो गए, हुआ क्या मेरे थान या सब जगह मेरा फोटो है। तो वो क्या किया वो फिर जाकर बिहारी जी में जाकर बहुत रोए कि प्रभु आप इस प्रकार की कृपा आज मुझे साक्षात दर्शन मिला, कि मैं ना रहते हुए भी आप वहां उपस्थित रहे हमारी जगह पे, और आप पूरा काम पूरा अच्छा से संभाल लिए। किसी ने एक कहने का उद्देश्य निष्ठा, जो मुझे करना है उसको रोज करना है, जैसे भागवत क्लास में बैठना है नियम से, समझे ना समझे। श्रीला कृष्णदास कबीर गोस्वामी लिखते हैं, ना देखिए नयने ना सुने श्रवणे तबु लिखी एवड विस्मय। चैतन्य चरितमृत जब लिखा गया तो उसमें बिल्कुल मैंने अंतिम अवस्था शेष अवस्था, उनका भय था कि ये ग्रंथ पूरा होगा कि नहीं होगा, कोई भरोसा नहीं, इसलिए पहले सूत्र सूत्र लिख दिया, फिर आखिरी में थोड़ा थोड़ा डिटेल्स लिखा। तो उन्होंने कहा, ना देखिए नयने ना सुने श्रवणे तबु लिखी एवड विस्मय की अद्भुत चैतन्य चरित। कृष्ण उपजीवे प्रीति, कृष्ण उपजीवे प्रीति बुझीवे रसे रीति, सुनिले हई बड़ हित। श्रवण करने से सभी जीवों का कल्याण हो जाएगा, भले समझे और न समझे। चैतन्य चरितामृत के प्रयार का माने कि वेद मंत्र है, इसका अगर कोई श्रवण करे, कोई रोज नियमित एक दो शब्द का याद करे, एकदम बिल्कुल सही जगह पे पहुंचेंगे। तो भागवत क्लास में निष्ठा से, रोज मंगला में निष्ठा से आना कि कभी छूटे ना, कभी भागवत क्लास में जितना हो सके उपस्थित, कोई भी प्रवचन करे तो ये करे कथा करे, रोज नियम से बैठे, इससे निष्ठा बन जाएगा। जब तक निष्ठा नहीं बनेगा, जैसे नाम निष्ठा, एक आसन में कितना समय तक नाम जप कर सकते, आठ माला दस माला बीस माला, इसका एक अभ्यास, इस करते करते एक निष्ठा उत्पन्न हो जाए, धीरे धीरे से अनर्थ चला जाएगा। अनर्थ पहले साधु संघ आदर श्रद्धा, साधु संघ भजन क्रिया तत्व अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया करते करते अनर्थ निवृत्ति अपने आप चला जाएगा। फिर निष्ठा, फिर रुचि आसक्ति भाव, भाव में नवविधा लक्षण है कि नवविधा भाव का लक्षण क्या है, छांतिर अवर्थ कालतम विरक्तिर मानसिन्नता आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद गुना खाने प्रीति तद वसति स्थले। ये नौ लक्षण है, नौ लक्षण से कि बहुत कई बार सुन चुके हैं, फिर जाके अध्ययन करके, शांति मतलब दूसरे की क्षमा करना, मतलब दूसरे के मंगल विधान करना, कोई किसी को कुछ बोला फिर प्रभु से उससे बदला लेने की भावना से नहीं, प्रभु से प्रार्थना ना करें, हे प्रभु इनकी मति सुधार जाए, हाँ इनका कल्याण हो, इनका कोई किसी प्रकार कोई दोष नहीं है, इनका कल्याण हो। छांतिर अव्यर्थ कालतम, समय को व्यर्थ जाने ना दे, हर क्षण नाम रूप गुण लीला में किसी में जोड़े रहे। छांतिर अव्यर्थ कालतम विरक्ति, संसार से विरक्ति, विरक्तिर मानसिन्नता, दूसरे के मान सम्मान प्रदान करना, विरक्ति मानसिन्नता आशा बंध समुत्कंठा, आशा लगाए रखना कि मुझे कभी ना कभी प्रभु का दर्शन मिलेगा ही मिलेगा, कभी आशा छोड़ना नहीं। सबरी आशा लेकर बैठी थी, प्रभु श्री राम आएंगे, मेरे गुरु ने कहा कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, इस शब्द गुरु ने ये शब्द सुनाया था कि मैं जिस प्रभाव जिस बल से जा रहे और वो प्रभु तुमको दर्शन देने के लिए आएंगे साक्षात श्री राम। आशा लगा के बैठे रहे थे, आशा बंध समुत्कंठा उत्कंठा के साथ, प्रभु आएंगे आज आए नहीं कल निश्चित आएंगे, आज आए नहीं कल निश्चित आएंगे, इस आज इतना दिन समय चला गया, 20 साल 30 साल हो गया और आखिरी 10 दिन बाद जीवित है, निश्चित आ जाएंगे, ये आशा लगा के बिल्कुल डट कर बैठे रहना चाहिए। आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदार्थ, निरंतर नाम गान कीर्तन में लगे रहना, नाम गाने सुधारुचि आसक्ति तद गुना खाने, तार गुण श्रवण कीर्तन में आसक्ति के साथ, आज प्रभु कितने सुंदर सुंदर लीला, आज जो जो मैंने कहा क्या क्या शब्द लिया, सबसे पहले कि अधिक अधिक सबसे पहले श्रीमद भागवतम के वासना के ऊपर चर्चा किए, उसके बाद प्रहलाद जी के अधितम उत्तमम, हाँ उत्तम शिक्षा क्या है, और उसके बाद जो दास भावना, सभी को दास भावना रखना है, जीवन के लक्ष्य में पहुंचने के लिए दास भावना करना, हाँ दास भावना से ही आनंद है, चैतन्य चैतन्य में प्यार में लिखा है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे से हाँ निष्ठा को बढ़ा के आगे चलना है, और आप लोग भी कृपा करें कि इसी प्रकार से हमारी निष्ठा थोड़ा उत्तरोत्तर वृद्धि हो। श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।